कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झन कार ले। बहुत ही सुंदर ये एक फिल्म कंपोजिशन है जो कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में से राग रागेश्री पर निबद्ध है। आज हम राग रागेश्री के बारे में चर्चा करेंगे और इस राग में किन स्वरों का प्रयोग होता है, किन स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, वर्जित है, कौन से थाट में इस राग को रखा गया है, माना गया है, एवं इस राग के ऊपर एक बेस्ड कंपोजिशन जो कि 3 ताल में निबद्ध है और बहुत ही प्राचीन बंदिश है, और इसको आज हम सीखेंगे आज के इस लेसन में। राग रागेश्री। सबसे पहले राग रागेश्री में जो स्वरों का प्रयोग होता है उनके बारे में मैं आपको रूबरू करवा दूं। एक बार हम लोग इसका जो आरोह है राग रागेश्री का, उसको हम लोग गाकर देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्वरों को हमने छोड़ दिया है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सा सा अगर हम आरोह अवरोह की बात करें तो हमने आरोह में ऋषभ को यानी कि रे और पंचम यानी कि प, इन दोनों स्वरों को हमने वर्जित यानी कि हमने इनका प्रयोग नहीं करा है, परंतु अवरोह में सिर्फ पंचम को हमने वर्जित रखा है और ऋषभ का प्रयोग करा है। तो इस तरीके से अगर हम इनका आरोह एवं अवरोह देखें तो जाते हुए ऋषभ पंचम वर्जित है और वापस आते हुए अवरोह में पंचम वर्जित है, तो जो राग की जाति है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, क्योंकि आरोह में तो 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, ऋषभ पंचम वर्जित है, इसी वजह से आरोह की तरफ में औड़व जाति में रहेगा यानी कि 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, और अवरोह में यानी कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम पंचम को वर्जित कर रहे हैं, तो इसी कारणवश षाड़व दैट इज 6 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। तो जो राग की जाति है जिसमें हम लोग आरोह अवरोह दोनों को जोड़ते हैं, तो उस हिसाब से जो जाति राग रागेश्वरी की बन रही है वो है औड़व षाड़व। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऋषभ पंचम वर्जित है आरोह में एवं पंचम वर्जित है अवरोह में, इसी वजह से इस राग की जो जाति है यह है औड़व षाड़व। अब आपने सुर में सुना होगा कि मैंने नी को कोमल लिया है, सा ग म द नी सा, ये नी कोमल है, सा नी ध म ग रे सा, उतरते हुए भी यानी कि अवरोह में भी हमने नी कोमल रखा है। जो थाट है वो खमाज थाट माना गया है। खमाज थाट अगर आपने सीखा है तो उसमें निषाद कोमल है। तो अब हम थोड़ा सा आगे राग के विषय में बात कर लेते हैं। हमने अभी तक आरोह अवरोह जाति एवं थाट के बारे में बात करी है, अब हम इसके वादी स्वर यानी कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्वर है, जो सबसे मुख्य स्वर जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब इसका जो मुख्य स्वर है जिसके ऊपर हम न्यास कर सकते हैं वो है गंधार, एवं संवादी स्वर जो कॉरस्पॉन्डिंग नोट है वो है निषाद, गंधार एवं निषाद वादी स्वर एवं संवादी स्वर है रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब आप इसमें स्वरों को लगाएंगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी राग को गाते हैं, राग का विस्तार गाते हैं, तो आरोह अवरोह आपको पता होना चाहिए। उस राग में जो स्वर लग रहे हैं, जो उनमें वादी संवादी स्वर है, उनका पता होना चाहिए। और उसमें जो फ्रेजेस लगते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसमें क्या क्या फ्रेजेस लग सकते हैं। तो जब हम वादी संवादी स्वरों की बात करी तो हमने बोला कि गंधार और निषाद है। अब हम इसमें विश्रांति के स्वर, जो कि हम इसमें और जो सुरों पर न्यास कर सकते हैं, ग म ध, गंधार तो है ही है, मध्यम और धैवत, इनके ऊपर भी हम लोग रुक सकते हैं, स्वर पर ठहराव ला सकते हैं। अब हम राग रागेश्री में जो मुख्य अंग है, जो कि फ्रेजेस हैं, जिनको आप गाने से या सुनने से राग के बारे में पता कर सकते हैं कि ये डेफिनेटली हो सकता है कि ये राग रागेश्री है, तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको हम कंपोजिशंस में, कोई भी कंपोजिशन उस राग के बेस्ड होता है, उसमें वो फ्रेजेस आते ही आते हैं। तो इस राग, जो कि राग रागेश्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फ्रेजेस आ सकते हैं, हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आप उनको गाएंगे। नी ये मैंने ऊपर के स्वर में गाया है, नी ध नी सा, ये मैंने लोअर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव को लेते हुए गाया है। तो इस तरीके से ये फ्रेजेस जो है, ये आप ऊपर के स्वर में भी लग सकते हैं और नीचे के स्वर में भी लग सकते हैं, यानी कि ऊपर के ऑक्टेव में भी आ सकता है और नीचे के ऑक्टेव में भी आ सकते हैं। ग म रे सा, ये एक फ्रेज है जो कि यूज होता है। ग म द नि ध म, ये एक फ्रेज है जो कि राग रागेश्री में लगेगा। ग म रे सा। अब हम इसमें जो एकदम शुरुआत में आप जो आलाप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा आपको मैं एक बता रही हूँ, उसमें कुछ फ्रेजेस जो हमने अभी करे हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि आलाप जब करें, जब आप राग गाते हैं तो एक प्रारंभिक आलाप गाया जाता है, या तो फिर आप अगर इंस्ट्रूमेंट सीखते भी हैं तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल में भी प्रारंभिक एक रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें और गायन में। बट गायन में जो होता है वो आलाप, जो आलापचारी है उसमें जो मेन स्वर है, कौन कौन से स्वरों पर न्यास है, वो सब आप दिखाते हैं, वो एक राग की पूरा एक आपको एक मैप दिखा देता है कि किस तरीके से आप इस राग में बढ़त करेंगे, उपज करेंगे या विस्तार करेंगे। ने ने धने सगा दाने सागा गाने सागा गाने ने गाने। क्योंकि हमने बात करी है कि वादी संवादी स्वर है तो उन पे ज्यादा रुकना है। ने ने द ने माधा माधा ने गा माधा गा ने ने सा दाने सागा। अभी तक हमने निषाद को मेन दिखाया। दाने ने सागा। अब निषाद और गंधार को किस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ये भी बहुत रियाज की चीजें हैं। सागा दाने सागा धने माधने सागा गागा मारे सान माधने सागा सागा मादा मादा गा मरे सागा मादा धने सागा मादा धने इस तरीके से आप प्रारंभिक आलाप को कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्रारंभिक आलाप को जिस तरीके से लिया जाता है उसमें पहले लोअर ऑक्टेव यानी कि मंद्र सप्तक के स्वरों को पहले लिया जाता है, फिर उसके उसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं माइंड में ये सब रखते हुए कि उसमें कौन सा वादी स्वर लग रहा है, कौन सा संवादी स्वर है और उनके साथ और न्यास के स्वर विश्रांति के स्वर कौन कौन से हैं, तो उस तरीके से मुख्य अंग क्या क्या है, तो वो तरीके से आप उनको लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके एक प्रोसेस में आप सुरों को मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक की तरफ ले जाएं। तो ये कंसेप्ट रहता है प्रारंभिक आलाप में। और अब हम लोग सीखते हैं छोटा ख्याल, और ये बहुत ही प्राचीन कंपोजिशन बंदिश है। तो बंदिश का पहले मैं आपको एक बार मतलब बता देती हूँ। बंदिश का अर्थ है बंधा हुआ। बंधा हुआ किस में? जो कि शब्दों में, सुर में और ताल में बंधा हुआ रहे उसको बंदिश कहते हैं। आज हम लोग रागेश्री में बड़े रामदास जी की ही एक कंपोजिशन जो कि तीन ताल में है वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो स्थाई है उसके पहले मैं शब्द बता दूंगी। और ये जो है क्लासिकल जो म्यूज़िक है ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है, तो इसको बड़े आराम से इत्मीनान से सीखें और सबसे पहले मैं आपको शब्द बता देती हूँ इस रचना में क्या क्या स्थाई में शब्द आ रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो नोटेशन है विदाउट ताल पहले एक बार कर लेंगे, और उसके बाद हम विद ताल उसको देख लेंगे, और उसमें कुछ छोटी छोटी हम लोग सरगम तान बोल सकते हैं उनको हम करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले मैं आपको स्थाई के शब्द बता देती हूँ। तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर। तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर। इसका जो अंतरा है वो इस तरीके से है। तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, रामदास पर द्रवहु कृपा कर। तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर। बहुत ही सुंदर एक रचना है, और किस तरीके से इनके जो वर्ड्स है उनमें क्या क्या स्वर लगते हैं पहले हम लोग वो सीख लेते हैं। तुम सुजान तुम, अब ये तुम जो है सा सा, सुजान रे धानी सब सा सा गुण के गगमा आगर मागर सान। तुम सुजान सब गुण के आगर सा सा रे धानी सा सा गगमा मागर सा। मोहन प्यारे गामधनी सानिधा नटवर गागग नागर मागर सा। मोहन प्यारे गामधनी सानिधा नटवर नागर गागग सा। तुम सुजान सब गुण के आगर। एक बार अंतरा किस तरीके से जा रहा है। तुम्हारे चरण पर गामदानी सा 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 सब शीश धरत नीनी सारे द्रव हूँ गा 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 कृपा कर गमा गरे सा। हम नोटेशन देख चुके हैं उसको एक बार अगर हम समझ चुके हैं तो हम इसको एक बार ताल के साथ जो कंपोजिशन है उसको किस तरीके से गा सकते हैं। ये जो बंदिश है ये जो रचना है ये नवी मात्रा से उठ रही है, तीन ताल में निबद्ध है। धा धिन धिन धा धिन धिन धा। तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर। तो हमारा जो सम है वो गुण का जो ग है उस पे आ रहा है। फिर से एक बार करते हैं। तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर। तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर। सा सा रे धानी सा सा गा गा मा मा मागर सा। सा सा रे धानी सा सा गा गा मा मा मागर सा। गा मा धानी सा नी दा दा गा 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 मागर सा। सा सा रे दानी सा सा गा 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 मा मा गे रे सा तुम्हारे चरण पर शीश धरत तुम्हारे चरण पर शीश धरत राम दास पर द्रव हूँ कृपा कर तुम्हारे चरण पर शीश धरत गमरानी गुण के आगर तुम सुजान सब गुण के आगर मोहन प्यार नटवर नागर मोहन प्यार नटवर नागर तुम सुजान सब गुण के आगर तुम्हारे चरण पर शीश धरत तो स्थाई और अंतरा दोनों ही नाइन्थ बीट से उठ रहे हैं तुम्हारे चरण पर शीश धरत रामदास पर द्रव हूँ कृपा कर तुम सुजान सब गुण के आगर। अब इसमें आप किस तरीके से स्वरों को लगा सकते हैं सा तुम सुजान सब नी सा तुम सुजान सब धनी सा तुम सुजान सब माधानी सा तुम सुजान सब सागा मारे सा तुम सुजान सब सागा माधा मगरे सा तुम सुजान सब सागा मदानी सा तुम सुजान सा गा मा धनी सा नी द मा ग रे सा तुम सुजान सा। इस तरीके से आप रियाज कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जब आप सुरों को पहले लगाएं किस तरीके से इस राग का टेम्परामेंट है वो कोशिश करें ध्यान करने का। सुर क्या क्या लगते हैं, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है और इसमें स्वर विश्रांति न्यास के स्वर कौन से हैं, वर्जित कौन से स्वर हैं वो ध्यान रखिए। और इस तरीके से जब आप धीरे धीरे करके रियाज करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। और कोशिश करा करिए जब भी सुरों को लगाएं आप तो तानपुरा को सुनते रहें। जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल, हारमोनियम है, तानपुरा है, उनको आप सुनते रहिए और उसके हिसाब से आप रियाज करिए। और बहुत ही जल्द हम इसी से कनेक्टेड लेसन से हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।